अध्याय 13 कलीसिया का संगठन। किसी को मसीह की आज्ञा का पालन करना है, किसी को उस कार्य को आगे बढ़ाना है जिसे उसने पृथ्वी पर आरंभ किया था, और ये अधिकार कलीसिया को ही दिया गया। इसी अभिप्राय से उसका संगठन किया गया है। कलीसिया के अध्यक्षों को नियम का पाबंद होना चाहिए और स्वयं नियमबद्ध रहना चाहिए, तभी वे सफलता के साथ परमेश्वर की कलीसिया का अनुशासन कर सकते हैं और उनको सिखला सकते हैं कि वे सुशिक्षित सैनिकों की भांति मिलकर कार्य करें। रणभूमि में यदि कार्य सफलता के लिए व्यवस्था और नियमों की आवश्यकता है, तो उनकी उस युद्ध में जिसमें हम शामिल हैं कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वो मनोरथ जिसे हमें प्राप्त करना है चरित्र में उससे बहुमूल्य तथा उच्च कोटि का है जिसके लिए रणभूमि में विरोधी सेनाएं युद्ध कर रही हैं। जिस युद्ध में हम संलग्न हैं उसमें सार्वकालिक कल्याण जोखिम में है। स्वर्गदूत संयुक्त होकर कार्य करते हैं, उनकी गति में पूर्ण व्यवस्था चरितार्थ होती है। स्वर्गीय सेना के ऐक्य व नियम का जितनी निकटता से हम अनुकरण करें उतना ही सफल उन स्वर्गीय कारिंदों का प्रयत्न हमारे लिए होंगे। जिनका अभिषेक ऊपर से हुआ है वे अपनी कोशिशों में नियम, व्यवस्था तथा कार्य की एकता को प्रोत्साहन देते हैं, तब परमेश्वर के दूत उनके संग सहयोग कर सकते हैं। परंतु स्वर्गीय दूत अपनी छाप अनियमितता, अव्यवस्थितता तथा गड़बड़ी पर कभी नहीं लगाएंगे। हमारी शक्तियों को निर्बल करने, धैर्य का ह्रास करने तथा कार्य सफलता में बाधा डालने की शैतानी कोशिशों का नतीजा ही ये सारी बुराइयां हैं। शैतान भली भांति जानता है कि नियम पालन तथा संयुक्त कार्य द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। वो भली भांति जानता है कि स्वर्ग से संबंधित प्रत्येक वस्तु पूर्ण व्यवस्था के अधीन है, और अधीनता तथा पूर्ण व्यवस्था अनुशासन ही दूतगणों की गति की पहचान है। नाम मात्र के मसीहियों को स्वर्गीय प्रबंध से जितना दूर रख सकें ऐसा करना उसकी पूर्व निश्चित युक्ति है। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों को धोखा देता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि नियम तथा व्यवस्था आध्यात्मिकता के शत्रु हैं, और उनकी एकमात्र सुरक्षा इसी में है कि वो प्रत्येक अपनी अपनी राह पकड़े और उन संयुक्त मसीही संप्रदायों से पृथक रहें जो व्यवस्था तथा कार्य में एकता स्थापन करने का परिश्रम कर रहे हैं। व्यवस्था व नियम स्थापन के प्रति जितने प्रयत्न किया जाएं, सारे के सारे भयंकर स्वतंत्रता में बाधक बतलाए जाते हैं। अतः उनसे ऐसे बिदकते हैं जैसे पोप के धर्म से धोखा खाई हुई आत्मा स्वाधीनता से सोचने तथा कार्य करने की स्वतंत्रता पर डींग मारती है और उसे एक सद्गुण कहती है। मुझे बतलाया गया कि शैतान का विशेष काम ये है कि लोगों को महसूस करावे कि परमेश्वर का ऐसा इंतजाम है कि वे अपने लिए स्वयं परिश्रम करें और अपना ही कोई ऐसा मार्ग अपनाएं जिससे भाई लोग कोई आक्षेप न करें। परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को प्रकाश का एक साधन बनाया है जिसके द्वारा वो अपना मनोरथ व इच्छा प्रकट करता है। वो अपने किसी एक दास को ऐसा अनुभव नहीं देगा जो स्वयं मंडली के अनुभव से विपरीत अथवा स्वतंत्र हो। वो एक मनुष्य को अपनी इच्छा का ज्ञान संपूर्ण कलीसिया के लिए कदापि न देगा। कलीसिया स्वयं मसीह की देह अंधकार में छोड़ दी जाए, अपनी दूरदर्शिता में वो अपने दासों को अपनी कलीसिया के निकट संपर्क में रखता है ताकि उनका भरोसा अपने पर अधिक न हो परंतु उन पर अधिक रहे जिनको वो अपने काम को उन्नति देने के लिए नेतृत्व कर रहा है। नबियों द्वारा मंडलियों की व्यवस्था। यरूशलेम की मंडली का संस्थान अन्य जगहों की मंडलियों के संस्थान के लिए एक नमूना होने को था, जहां सत्य के संदेश देने हारे सुसमाचार के लिए शिष्य बनाते। जिनको मंडली की देखरेख का दायित्व सौंपा गया उनको परमेश्वर की मीरास के ऊपर प्रभुता न जतलानी थी, परंतु बुद्धिमान चरवाहों की भांति परमेश्वर के झुंड के लिए दृष्टांत बनकर रखवाली करनी थी और सेवकों को सुख्यात बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना था। इन लोगों को सत्य के पक्ष में संयुक्त होकर अपना अपना स्थान लेना था और उस पर दृढ़ता तथा निर्णय के साथ कायम रहना था। इस प्रकार उनका समस्त झुंड पर संयुक्त करने वाला प्रभाव पड़ता।
नए चेलों की आध्यात्मिक वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि की हैसियत से प्रेरितगण उनको सुसमाचार संबंधी व्यवस्था की सुरक्षाओं से घेरे रखने में सावधान थे। प्रत्येक मंडली में अफसर चुने जाते थे और विश्वासियों के आध्यात्मिक कल्याणार्थ सारे मामलों में यथोचित व्यवस्था एवं नीति स्थापन की जाती थी। ये बात मसीह के समस्त विश्वासियों को एक समुदाय में शामिल करने के सुसमाचार की योजना के अनुकूल थी, और इसी योजना का पालन करने में पौलुस अपने सारे सेवा कार्य में बड़ा सावधान रहा। उसके परिश्रम व मेहनत द्वारा किसी भी स्थान में जिनका मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने की ओर मार्गदर्शन किया गया, वे यथोचित समय में मंडली के रूप में व्यवस्थित किए गए। विश्वासियों की संख्या केवल छोटी होने पर भी मंडली का संस्थान किया जाता था। इस प्रकार मसीहियों को एक दूसरे की सहायता करना सिखलाया जाता था, और ये प्रतिज्ञा याद दिलाई जाती थी, जहां मेरे नाम पर दो या तीन इकट्ठा होंगे, वहां मैं उनके बीच उपस्थित हूंगा। मंडली की फूट का इलाज। यरूशलेम में अंताकिया के प्रतिनिधि विभिन्न मंडलियों के भाइयों से मिले, जो एक विराट सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए थे। इनमें उन्होंने अन्य जातियों के बीच की गई सेवा की सफलता का वर्णन किया था। तत्पश्चात उन्होंने कतिपय फरीसी नवमतावलंबियों के अंताकिया जाने के कारण हुई गड़बड़ी का स्पष्ट चित्रण किया, जो घोषित करते थे कि उद्धार प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों का खतना कराना जरूरी है और उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पर सभा में गर्मा गर्म बातचीत। पवित्र आत्मा ने उचित समझा कि अन्य जातियों से आए हुए मतावलंबियों पर विधि का दबाव न डाला जाए, और प्रेरितों का मत इस प्रसंग में परमेश्वर की आत्मा के मतानुकूल था। याकूब इस सभा का सभापति था, और उसका अंतिम निर्णय ये था कि मेरा विचार ये है कि अन्य देशियों में से जो लोग ईश्वर की ओर फिरते हैं, हम उनको दुख न देवें। इस बात पर वाद विवाद समाप्त हो गया। इस अवसर पर ऐसा ज्ञात होता है कि सभा के निर्णय को घोषित करने के लिए याकूब को चुन लिया गया था। अन्य देशियों में से जो लोग ईश्वर की ओर फिर गए थे, उन्हें उन प्रथाओं को त्यागना था जो मसीह धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल थे। अतः प्रेरितों और प्राचीनों ने सहमत होकर अन्य देशियों को आदेश भेजे कि मूर्तों की अशुद्ध वस्तुओं से और व्यभिचार से और गला घोटे हुओं के मांस से और लोहू से परे रहें। उन पर जोर दिया गया कि वे आज्ञाओं का पालन करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें। उनको प्रेरितों द्वारा ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जिस सभा ने इस विषय का निर्णय किया, उसमें यहूदियों तथा अन्य देशियों में से हुए मसीही लोगों की मंडलियों को स्थापन करने में प्रमुख प्रेरित और शिक्षक तथा विभिन्न जगहों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। वहां यरूशलेम के प्राचीन बुजुर्ग और अंताकिया के अध्यक्ष तथा बड़ी बड़ी प्रभावशाली मंडलियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभा ने दिव्य निर्णय के आदेशानुसार और ईश्वरीय इच्छा द्वारा स्थापित मंडली की मर्यादानुसार कार्य किया। उनके सोच विचार के परिणाम स्वरूप सब ने देखा कि परमेश्वर ने स्वयं विचाराधीन प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि अन्य देशियों को भी पवित्र आत्मा का दान दिया गया, और उन्होंने महसूस किया कि आत्मा के पथ प्रदर्शन का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। इस प्रश्न पर समस्त मसीही मंडली के मत नहीं दिए गए। प्रेरितों तथा प्राचीनों व प्रभावशाली तथा विवेकी पुरुषों ने आज्ञा दी, जिसको साधारण मसीही मंडलियों द्वारा स्वीकार किया गया, जिस पर भी सब इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हुए। कुछ अभिलाषी स्वाभिमानी भाइयों का एक विरोधी दल था जो इस बात पर सहमत न हुए। ये लोग अपनी ही जिम्मेवारी पर कार्यरत है। वे कुड़कुड़ाने और दोषारोपण करने में तत्पर रहे और नई योजनाओं को प्रस्तावित करते रहे, और परमेश्वर के सुसमाचार के संदेश को सिखलाने को नियुक्त किए लोगों के कार्य को नष्ट करने की चेष्टा में रहते रहे। प्रारंभ ही से मंडली को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और समय के अंत तक भी ऐसा ही करना पड़ेगा। व्यक्तिगत निर्णय को प्रधानता देने में भय।
जो अपने वैयक्तिक फैसले को प्रमुख समझते हैं, वे बड़े खतरे में हैं। शैतान को पूर्व निश्चित है कि ऐसों को उनसे जो प्रकाश के स्रोत है पृथक रखे, और जिनके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को पृथ्वी पर बनाना व फैलाना चाहता है, जिनको परमेश्वर ने नेता होने की जिम्मेवारी उठाने के लिए मुकर्रर किया है, उनकी अवहेलना करने तथा उनको तुच्छ समझने का अर्थ उन साधनों को ठुकराना है जिन्हें उसने अपने लोगों की मदद, प्रोत्साहन तथा शक्ति के हितार्थ नियुक्त किया है।
परमेश्वर के कार्य में संलग्न किसी भी कर्मचारी को इनकी अवहेलना करना और ये सोचना कि उसका प्रकाश किसी और मार्ग से नहीं आएगा सिवाय सीधे परमेश्वर से, अपने आप को ऐसी स्थिति में रखना है जहां वो शत्रु से धोखा खा सकता है और गिराया जा सकता है। परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता से प्रबंध किया है कि सारे विश्वासी आपस में संबंध द्वारा एक मसीही दूसरे से और एक मंडली दूसरी से संयुक्त हो जाए। इस प्रकार मानवीय साधन ईश्वरीय साधन के संग सहयोग देने के योग्य होगा। प्रत्येक साधन पवित्र आत्मा के अधीन होगा और सारे विश्वासी सुव्यवस्थित सुसंचालित प्रयत्न में मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार जगत को देंगे। जिस प्रकार मानवीय देह के विभिन्न अंग संपूर्ण देह के निर्माणार्थ संयुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक अंग अपने अपने कर्तव्य को पालन सर्वशासित बुद्धि की आज्ञाधीनता में करता है, इसी प्रकार मसीह की मंडली के सदस्यों को सुडौलता से एक अंग में संयुक्त हो जाना चाहिए और संपूर्ण संस्था की पवित्र बुद्धि के अधीन रहना चाहिए। स्थानीय मंडली के अफसरों को चुनाव तथा अभिषेक। पौलुस प्रेरित तीतुस को यूं लिखता है, तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पति के पत्नी हूं, जिनके लड़के वाले विश्वासी हूं और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी। तीतुस 1:5-7। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। 1 तिमुथियुस 5:22। हमारा कतिमय मंडलियों में संस्थान तथा अध्यक्षों को अभिषेक करने का कार्य यथोचित समय से पूर्व किया गया। इसमें शास्त्र के नियमों की अवहेलना की गई, अतः मंडली बड़े संकट में पड़ गई। नेताओं के चुनाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि ऐसे पुरुषों को अभिषिक्त करें जो जिम्मेवारी के काम के योग्य नहीं हैं। ऐसे लोग जिन्हें स्वयं हृदय परिवर्तन, उन्नति, उदारता, शुद्धता की आवश्यकता है, इससे पहले कि वे परमेश्वर के कार्य में कोई भी स्थान ले सकें। मंडली की संपत्ति। जब किसी नगर व कस्बे में दिलचस्पी पैदा हो जाए तो उसको जारी रखना चाहिए। उस जगह में पूर्ण नीति से तब तक कार्य होना चाहिए जब तक उपासना का एक छोटा गिरजाघर चिन्ह स्वरूप खड़ा न कर दिया जाए, जो परमेश्वर के सब्बत का स्मारक और नैतिक अंधकार के बीच प्रकाश जैसा प्रतीत हो। ये स्मारक जगह जगह स्थापन होना चाहिए कि सत्य के लिए गवाह ठहरे। मंडली से संबंधित कार्य को किसी अनिश्चित स्थिति में नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा कदम उठाना चाहिए कि परमेश्वर के कार्य के लिए मंडली के लिए संपत्ति, जायदाद प्राप्त हो जाए, जिससे काम की उन्नति में ढील ढाल न हो और वह धन जिसे लोग परमेश्वर के कार्य में अर्पण करना चाहते हैं शत्रु के हाथ में न चला जाए। मैंने देखा कि परमेश्वर के लोगों को होशियारी से काम करना चाहिए और मंडली के कार्य को सुरक्षित दशा में रखने के हेतु कुछ भी अधूरा न छोड़ा जाए। फिर सब कुछ करने के बाद वे परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें कि वह सारी बातों को दूर करे जिससे शैतान परमेश्वर के शेष लोगों के प्रति लाभ न उठावे। अब शैतान के काम करने का समय आया है। हमारे आगे तूफानी भविष्य उपस्थित है और मंडली को जागना चाहिए कि आगे बढ़ें ताकि वे उसकी योजनाओं के विरुद्ध अडिग रह सकें। समय आया है कि कुछ न कुछ किया जाए। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि उसके लोग मंडली के मामले को ढीला ढाला छोड़ दें और शत्रु शैतान को पूरा लाभ उठाने का मौका दें, ताकि वह सारे मामलात को जैसा उसकी इच्छा हो अपने काबू में कर ले। वार्षिक सम्मेलन। थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम कीजिए कि आप परमेश्वर के लोगों के सम्मेलन में उपस्थित हो सकें।
भाइयों और बहनों, आपके लिए यह अच्छा होगा कि आपके दैनिक काम को थोड़ा बहुत नुकसान हो, बनिस्बत इसके कि आप उस संदेश को सुनने की अवहेलना करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रत्येक संभावित आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने से वंचित रहने के लिए कोई बहाना न कीजिए।
आपको प्रकाश की प्रत्येक किरण की आवश्यकता है। आपको सुयोग्य बनने की आवश्यकता है कि आप उस आशा के लिए जो आपके अंदर है नम्रता तथा भय के साथ उत्तर दे सकें। आप ऐसे सुअवसर को हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? हम में से किसी को कैंप मीटिंग, वार्षिक उत्सव में मंडली के अध्यक्षों तथा बाइबल कर्मचारियों के बूते पर इस ख्याल से कि वे सम्मेलन को आशीषप्रद बनाए नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग अध्यक्ष के बलबूते पर कार्यवाही करें। वह नहीं चाहता कि मनुष्य के ऊपर सहायता के लिए आश्रय करके निर्बल हो जाए। उन्हें लाचार बालक की भांति सहारे के लिए किसी दूसरे पर नहीं झुकना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी के रूप में प्रत्येक मंडली के सदस्य को वैयक्तिक दायित्व महसूस करना चाहिए। अपने स्वयं में जीवन और जड़ रखें। उत्सव की सफलता पवित्र आत्मा की उपस्थिति तथा सामर्थ्य पर निर्भर करती है। आत्मा के उंडेले जाने के लिए सत्य प्रेमियों को प्रार्थना करनी चाहिए और जहां तक हमारी शक्ति के अंदर है हमें प्रत्येक रोड़े को दूर करना चाहिए वह आत्मा काम कर सके। आत्मा कदापि नहीं उंडेला जाएगा जब तक दूसरे के प्रति वैमनस्य तथा ईर्ष्या की भावना मनों में प्रज्वलित रहती है। बैर, डाह, कटु विचार, कटु वचन शैतान की ओर से है और ये पवित्र आत्मा के कार्य में प्रभावतः बाधक होते हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर को कोई वस्तु ऐसी प्यारी नहीं जैसी उसको कलीसिया है। किसी वस्तु की वह ऐसी रक्षा नहीं करता। परमेश्वर को कोई कार्य ऐसा बुरा नहीं मालूम होता जैसा उसके कार्यकर्ताओं के प्रभाव को नष्ट करने वाला कार्य होता है। जितने आलोचना तथा निरुत्साह करने में शैतान की सहायता करते हैं उन सब से लेखा लिया जाएगा। मंडली का अध्यक्ष उपदेश को व्यवहार में लाए। आपको हर समय अपनी बात में सावधान होना चाहिए। क्या परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि होने को बुलाया है कि उसके स्थान पर पापियों से विनय करें कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो? यह एक पवित्र उच्च कोटि का कार्य हो। जिस समय आप पुलपिट मंच पर का व्याख्यान समाप्त करते हैं उसी समय आपके काम का आरंभ होता है। जब मीटिंग से बाहर हों तो आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो गए हैं, परंतु फिर भी प्राणों को बचाने के लिए अपने समर्पण को कायम रखिए। आपको एक जीवित पत्री होना चाहिए जिसे सब लोग जानते और पढ़ते हैं। विश्राम की युक्ति न सोची जाए, सुखचैन को ख्याल में न लाना चाहिए। प्राणों का वचन सर्व महत्वपूर्ण विषय है। इस काम के लिए मसीह के सुसमाचार का अध्यक्ष बुलाया गया है। उसको मीटिंग से बाहर शुभ कार्य करने चाहिए और व्यवसाय को धार्मिक बातचीत और सचेत चरित्र से विभूषित करना चाहिए। आपको उन सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखलाना चाहिए जिनका आप दूसरों के सामने प्रचार करते हैं, और अपने ऊपर काम का भार तथा दायित्व का बोझ जो प्रत्येक अध्यक्ष के कंधों पर होना चाहिए इस प्रकार लें जैसे पहले कभी नहीं लिया था। जो उपदेश मंच पर दिया गया था उसकी निजी कार्य को जारी रखकर पुष्टि कीजिए। वर्तमान सत्य के विषय में सावधानी के साथ वार्तालाप में व्यस्त होकर श्रोतागणों की मानसिक स्थिति को निष्पक्षता से निश्चय कर लें और परमेश्वर का भय मानकर महत्वपूर्ण सत्य का सहयोगियों को परिस्थिति पर व्यवहार कीजिए।